ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। भाजपा नेता और महायुति के विधायक दल के नेता देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर महाराष्ट्र में सरकार बनाने का दावा पेश किया। उनके साथ कार्यवाहक मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और राकांपा प्रमुख अजित पवार भी थे। श्री फडणवीस ने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें कल शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया है। शपथ ग्रहण समारोह आजाद मैदान में शाम 5:30 बजे निर्धारित है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई अन्य गणमान्य व्यक्ति और लगभग 40,000 लोग शामिल होंगे। उधर झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार कल दोपहर 12:30 बजे रांची में होगा। 11 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6, कांग्रेस के 4 और राष्ट्रीय जनता दल के 1 मंत्री शपथ लेंगे। हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर को झारखंड के चौथी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के पुरी में ब्लू फ्लैग बीच पर इस समय नौसेना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हैं। समारोह में नौसेना कमांडो और सैन्यकर्मी, 15 से अधिक जहाजों, पनडुब्बियों और 40 विमानों की विशिष्ट क्षमता का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में MiG-29K और हॉक लड़ाकू विमानों तथा मार्कोस और युद्धपोतों के युद्धाभ्यास का प्रदर्शन भी किया गया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत और चीन के बीच बेहतर संबंधों को बढ़ाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता के महत्व पर बल दिया है। चीन के साथ संबंधों पर आज राज्यसभा में डॉ जयशंकर ने कहा कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच चर्चा तनाव कम करने और प्रभावी सीमा प्रबंधन पर केंद्रित होगी। सीमा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर डॉ जयशंकर ने कहा कि लद्दाख में सड़कों, हवाई क्षेत्रों और अन्य रसद सुविधाओं के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इससे सशस्त्र बलों की क्षमताओं में वृद्धि हुई है। सरकार ने कहा है कि देश में पिछले 5 वर्षों के दौरान वामपंथी उग्रवाद के खतरे से 60 जिले मुक्त हो गए हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के दृढ़ कार्यान्वयन के बाद हिंसा में कमी आई है। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि वर्ष 2010 की तुलना में वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसक घटनाओं की संख्या में 73% की कमी आई है। लोकसभा में आज रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया। विधेयक का उद्देश्य रेलवे बोर्ड को वैधानिक शक्तियां प्रदान करना और निकाय की कार्यप्रणाली और स्वतंत्रता बढ़ाना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य रेलवे क्षेत्र में और अधिक दक्षता लाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण विकास हुए हैं। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आज हुए हमले में बाल बाल बच गए। हमला उस समय हुआ जब वे स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर श्री अकाल तख्त द्वारा दिए गए आदेश का पालन करने के लिए गुरुद्वारे में सेवा के लिए मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार हमलावर नारायण सिंह को खालिस्तानी समर्थक बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हिंसा प्रभावित संभल का दौरा करने के प्रयास पर भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस इस मामले में औपचारिकता कर रही है। उन्होंने कहा कि श्री गांधी का ये अचानक उठाया गया कदम केवल मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए है। इसरो द्वारा PSLV-C59 PROBA-3 अंतरिक्ष यान में गड़बड़ी के कारण मिशन के प्रक्षेपण को पुनर्निर्धारित किया गया है। अब ये प्रक्षेपण कल शाम 4:12 पर किया जाना है। भारत अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। शारजाह में आज भारतीय टीम ने संयुक्त अरब अमीरात को 10 विकेट से हराया। शुक्रवार को सेमीफाइनल में भारत का सामना श्रीलंका से और पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। ओमान के मस्कट में जूनियर एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में आज रात 8:30 बजे भारत पाकिस्तान से खेलेगा। सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को और पाकिस्तान ने जापान को हराया था। सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में ग्रैंडमास्टर डी गुकेश और वर्तमान चैंपियन चीन के डिंग लिरेंग के बीच 8वीं बाजी खेली जा रही है। 14 बाजी के मुकाबले में दोनों खिलाड़ी 3.5 अंकों के साथ बराबरी पर हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।